ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल परसों बारिश हुई तो और मौसम अच्छा हो गया, चारों ओर हरियाली, तो मन में भी तपस्या का आनंद। हमें तपस्या दमन नहीं लगती, बाबा की याद में हमें सुख का, आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हमारी तपस्या ऊपर से लदी हुई नहीं है, पर हमारा अपना ही संकल्प कि हम योगी हैं, तपस्वी हैं। आत्मा दिल से बाबा के साथ जुड़ी हुई है, हम चारों ओर से, जैसे आप सभी अपना घर गृहस्थी नौकरी धंधा उस सारे कारोबार से फारिग होकर यहां आए हैं तपस्या के लिए, और तपस्या में भी हम और अपने आप को न्यारा करते हैं, देहभान से न्यारा, और स्व में स्थित हमारा पहला अभ्यास ये है। फिर हम इस दुनिया से ऊपर उठते हैं, परमधाम निवासी बनते हैं। जिसको याद करते हैं वो जहां होता है वहां बुद्धि जाती। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा परम धाम निवासी हैं, तो हम बुद्धि से असली घर में जाते हैं और बाबा के सामने जाकर शांति से बैठते हैं। और जब हम शांत स्वरूप होकर बाबा के सामने बैठते हैं तो हम आनंद स्वरूप बनकर वापस आते हैं, रिफ्रेश होते हैं। बुद्धि में और कोई दुनियावी पंचात की बातें नहीं, तो आप बाबा के सामने स्थिर एकाग्र होकर बैठ सके। यही अभ्यास हमें बार बार करना है। विषय इस क्लास के लिए है स्वरक्षक, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक। सुरक्षा विभाग के भी भाई बहने आए हैं। बाबा ने हमें स्व से परिचित किया, हम तो पहले फिजिकल लेवल पर ही समझते थे ना, इसलिए शारीरिक स्तर पर क्या रक्षा करनी है वो तो सब जानते हैं। हेल्थ की बातें भी इसमें आ जाती हैं। साधन शुद्धि मीन्स एंड वेज और हमारी विधि की शुद्धि। बाबा ने ब्रह्मचर्य से लेकर अन्न शुद्धि से लेकर व्यसन मुक्ति से लेकर होटलों थिएटरों से मुक्ति से लेकर ये धारणाएं जो कराई उसमें दोनों पर्पज सिद्ध हो जाते हैं। आत्मशुद्धि भी इससे होती है और शरीर शुद्धि भी होती है, क्योंकि अब हम शुद्ध सात्विक शाकाहारी बाबा की याद में बनाया हुआ बाबा की याद में स्वीकार कर। तो फिजिकल लेवल पर भी शुद्धि, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मशुद्धि भी, आत्मा की भी सुरक्षा, वो तो बाबा के बनते ही हमारी धारणाएं हो गई। ये बाबा की ज्ञान की शक्ति, बाबा की याद की शक्ति जो हमारे जीवन की वो प्राथमिक धारणाएं हो गई है। ये ऊंचे से ऊंची धारणाएं, घर गृहस्थ में रहते हुए ये धारणाएं, ब्रह्मचर्य की धारणाएं, अन्न शुद्धि की धारणाएं, जो भी बाबा ने धारणा करा, ये बाबा के ज्ञान की शक्ति और हम वो ही कल्प पहले वाली देवताई घराने की आत्माएं जो सहज स्वीकार हो गए। बाकी आधा कल्प से इतनी भक्ति की, इतने धर्म संप्रदाय, लेकिन पवित्र कोई बना नहीं सका। बाकी सब धारणाएं वो सिखाते हैं, दया करो, धर्म करो, दान करो, सच बोलो, झूठ न बोलो, प्रेम से बोलो, ये सब सिखाते। पर पवित्र बनो ये कोई नहीं सिखा पाता है। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति है। पर उसके बाद भी हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। संपन्न और संपूर्ण बनना है, इसलिए लाइफ लॉन्ग पुरुषार्थ है। हम कहते हैं ना, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीना है, अंत तक पढ़ना है। फाइनल रिजल्ट तक पढ़ना है, अभ्यास करना। अभी एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम किसी की बुराई कर नहीं सकते कि भाई ये अच्छा पुरुषार्थी नहीं है, इतना ज्ञान होते हुए भी गुस्सा करते हैं, ऐसे हम एक दो के पुरुषार्थ स्थिति का विवेचन करते रहते हैं, बात करते रहते। बाबा ने कहा हम किसी की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो अंत में पता चलेगा। अभी की लिस्ट में महारथी है, अच्छे पुरुषार्थी है, पर बाबा को तो चाहिए अंत की लिस्ट के महारथी, फाइनल रिजल्ट के अच्छे पुरुषार्थी। इसलिए जैसे बाबा कहते हैं जीवन सदा होती, जीवन कोई आज में चार घंटे जिया ऐसा नहीं होता है ना, जिया माना पूरा दिन जिया। तो ये ज्ञान और योग भी अंत तक जीना है। कई बार हम सोचते हैं ना भाई अब सेवा नहीं है, अब क्या करें क्या करें, ज्ञान जीना है अंत तक। अपने आप क्वालिटी और रिफाइन होते जाते हैं। और बाबा देखो आज से कई इसमें भी पुराने होंगे, आज से 53 वर्ष पूर्व हम ज्ञान में आए, उस समय लोग सात्विक थे, गृहस्थी लोग भी बहुत अच्छी धारणा वाले थे, पर उस समय बाबा के कहने पर सब नियम धारणाएं अपनाई। उस समय तो खान पान सब अच्छा था, पर बाबा ने भविष्य को बुद्धि में रखकर उस समय से धारणाएं कराई, उससे भी पहले से। आज हम सब देख रहे हैं कि कितने विकारी मानस हो गए, संसार में जो घटनाएं घट रही है, कितने गंदी वृत्तियां हो गई है, खाने जैसी कोई चीज नहीं रही, इतनी मिलावट बनावट हो गई। तो बाबा ने शुरू से धारणाएं कराई तो आज देखो हमें कोई आकर्षण नहीं, कितनी भी वैरायटी चीजें निकली है, पर हम बाबा के बच्चों को कोई आकर्षण नहीं। तो हमारी कितनी सेफ्टी है हेल्थ वाइज भी, और अन्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सारे इविल पावर्स, तांत्रिक विद्याएं उनके द्वारा ही कराई जाती। बाबा ने हमें सेफ कर दिया क्योंकि हम शुद्ध अन्न किसी का पानी भी नहीं पीते। पानी और ये अन्न के माध्यम से ही सारी काली विद्याएं कहो, बुरी विद्याएं कहो, तंत्र प्रयोग कहो, ये सब उनके द्वारा ही कराए जाते। आप कई किस्से सुनते होंगे कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, ऐसा कुछ खिला दिया, बेहोश हो गए, लूट के ले गए। तो हमारे नियम मर्यादाएं ही हमारी सुरक्षा है। और अगर हम प्योरिटी को, बाबा ने फर्स्ट कर्म में हम सबने ब्रह्मचर्य पालन किया और उसमें हम अटूट रहते हैं, धारणाओं को तोड़ते नहीं, और रोज योग करके और गहराई में जाकर हम अपनी मनसा को भी शुद्ध कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है विकार का अंश भी न रहे। हमारी एक पवित्र पर्सनालिटी बन रही है। हम आपस में कॉमन हैं तो हमें इतना पता नहीं चलता है, पर हमारा अनुभव है यहां सालों हम रहे और विंग्स प्रोग्राम में सब गेस्ट आते, कई लोग ये कह के जाते थे कि आप लोगों के नैन कुछ अलग ही, आप लोगों के चेहरे कुछ अलग ही दिखते हैं, क्योंकि रोज हम देह भान से न्यारे होते हैं, डिटैच। तो एक रूहानियत हमारे में आती है, पवित्रता, निर्दोषता हमारे दृष्टि वृत्ति में आती है। ये फर्क मैंने ब्राह्मणों में भी देखा जो रोज मॉर्निंग क्लास करते, उनको देहभान से डिटैच होकर क्लास योग करने का अभ्यास है, जो रोज क्लास करते वो निंद्रा जीत भी बनते जाते और रूहानियत आते जाते। और जो हफ्ते में एक बार आएंगे, कभी कभी आएंगे, वो निंद्रा जीत भी नहीं बन पाते, निंद्रा भी उनको परेशान करती और डिटैच होने की प्रैक्टिस नहीं। तो एक जो रूहानियत हम सब में आती है और आत्मिक दृष्टि, दृष्टि की शुद्धि, निर्दोषता, तो हमारे साथ कोई दैहिक भाव से, व्यक्त भाव से व्यवहार नहीं कर सकते। ये भी एक सेफ्टी हो जाती। अगर हमारी बुद्धि देह में फंसी हुई है तो कोई देह दृष्टि से हमें देखेगा। अगर हमारे में देह भान नहीं, इंद्रियों का आकर्षण नहीं, व्यक्त भाव, बहिर्मुखता नहीं, तो हमें भी कोई उस नजर से नहीं देखेगा। हमारे सामने वो चंचलता नहीं कर सकते, पर ये अभ्यास निरंतर चले। और इसलिए दिन भर में जिस किसी से भी हम मिले, हम अपनी हर मुलाकात को एक क्षण बाबा की याद में रहकर स्पिरिचुअलाइज्ड करें। जब भी किसी से मिले उस मिलन को स्पिरिचुअलाइज्ड करिए। हमें कॉमन रूप से नहीं मिलना है, भले कोई हमारे मित्र संबंधी हो, फ्रेंड्स हो, या बीके परिवार हो, या कोई नए व्यक्ति से हम मिलते हैं, हम एक क्षण बाबा को याद करके फिर उस आत्मा से। तो लौकिक मुलाकात को अलौकिक बनाए हम हमेशा, तो ना हम साधारण बनेंगे ना हमारी कोई व्यवहार चलन हल्की होंगी, पर रूहानी मुलाकात करनी, उस आत्मा को भी फायदा, हमें भी फायदा। तो पवित्रता, रूहानियत मीन्स आत्मभान, देहभान से न्यारापन। तो बाबा ने कहा है, आत्मभिमानी स्थिति ही सेफ्टी का साधन है, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी जब भी हमें मिलता है वो अपने विचारों के साथ मिलता है। कोई जल्दबाजी में, कोई चिंता, कोई तनाव, कोई देह भान की दृष्टि से, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, हरेक के मन के विचारों का प्रवाह हमारे मन से टकराता है ना। किसी के मन में ईर्ष्या, द्वेष, पर अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में हैं, बाबा की याद में हैं, तो उन विचारों का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। बाबा कहते ना, योग कवच है। बाबा की याद सोल कॉन्शियस स्टेज, सेफ्टी की स्टेज। एक और अच्छी बात बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति। तो ये कितनी बड़ी सेफ्टी है हमारी। हम आत्मभिमानी स्थिति से भाई को, बहन को, किसी को भी मिलेंगे, वो कितने भी बॉडी कॉन्शियस हो, हमारे पर प्रभाव नहीं है। आत्मभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति, कोई भी लेप क्षेप प्रभाव नहीं पड़ी। तो स्व के लिए मैं ये सारी बातें बता रही हूं, स्वरक्षा में हमें ये करना है। जैसे घर से बाहर आप जाते हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों को या जो हमारे साथी हैं जिम्मेवार, उनको बता के जाते हैं ना कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, 2 घंटे में आऊंगा या 4 घंटे में आऊंगा। और ये एक मैनर है रिलेशन में, कि जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है या जो रेस्पॉन्सिबल है, एटलीस्ट हमें उनको बता के जाना चाहिए। और जब वापस आते हैं तो भी हम फिर बातचीत करते हैं ना कि भाई ये काम हुआ नहीं हुआ, कितना कहाँ कहाँ जाना पड़ा, क्या हुआ, समाचार देते हैं। ऐसे नहीं मैं कहाँ भी जाऊं, मैं क्यों बता के जाऊं, मिजाज करते हैं ना कई लोग। नहीं, जब संबंध में बंधे हैं, साथ रहते हैं, जीते हैं, तो बताना अच्छा है। ऐसे हम जब घर से बाहर जाते हैं, एक क्षण बाबा को बता के जाए, हमारे बाबा से भी संबंध है ना। जब वापस आते हैं तो भी बाबा को बताएं। तो ये भी आत्मा की दृष्टि से तो सेफ्टी है ही, परंतु अगर हमें ये आदत पड़ जाए कि घर में भी बताना है, बाबा को भी बताना है, तो याद में जाएंगे, कर्म जो करेंगे उसमें भी बाबा याद रहेगा, और ड्रामा अनुसार कुछ भी हुआ तो घर वालों को भी पता रहेगा कि कहाँ गया है, क्या करने गया है। हमने सिर्फ बुद्धि योग बाबा से नहीं जुड़ा है, बुद्धि योग के साथ पूरा जीवन भी बाबा से जुड़ा है। हमने भगवान से जीवन जोड़ा है हर संबंध से। तो ऐसे नहीं सुबह शाम बाबा से बात करनी है, नहीं, प्रैक्टिकल हर कर्म में भी बाबा को हमें बताना है, तो हम सहज योगी, निरंतर योगी रह सकेंगे। तो अन्न शुद्धि, ब्रह्मचर्य से लेकर हमारी सब धारणाएं, मर्यादाएं और हमारी दिनचर्या, हमारी दिनचर्या हमारी अवस्था की सेफ्टी है। अगर आप अपने आप को दिनचर्या में बांध देंगे कि ये अमृत वेला, माना योग का टाइम, दादी जानकी क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, जिंदा या मुर्दा, अमृत वेले बाबा के कमरे में ही होने चाहिए। भाई अमृत वेले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ढूंढना हो तो वो बाबा के कमरे में ही मिले। संध्या योग के लिए भी दादी बहुत दृढ़ रहती थी। दादी कहती थी कि हम लोगों ने विदेश में जो कॉन्टेक्ट सोल्स हैं, संपर्क संबंध के जो VIPs, IPs हैं, और कोई भी धर्म के हो, वहाँ एक इंटरफेथ ग्रुप होता है सभी धर्म, तो उसमें हमारे भाई बहने भी जाते सेवा के हिसाब से। तो ये आइडिया हम लोगों ने दिया था कि इस समय हम सब योग करें। तो दादी का सदा लक्ष्य रहता था कि ये मुझे मिस नहीं करना, हमारा भी लक्ष्य रहे कि संध्या के समय आप ऑफिस में हैं, ट्रैवलिंग में हैं, हम कहीं भी हैं, घर में हैं, स्नान कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी, पर लक्ष्य रहे कि ये 7 से 7:30 का समय बाबा की याद का समय है। सेवा में भी है तो भी कि इस समय मुझे साइलेंस में रहना है, बाबा की याद में रहना। मेरा अपना भी ये अनुभव है कि हम विंग्स के प्रोग्राम में, शिविर के प्रोग्राम में अक्सर शाम को ही उद्घाटन होते थे और हम एकोमोडेशन की सेवा करते थे। लोग तो सारा दिन आते थे, शाम को भी आते थे, पर लक्ष्य रखते थे कि ये समय योग का समय है, हमें साइलेंस में बाबा की याद में रहकर ये सेवा करनी है। तो नियम मर्यादाओं में अपने आप को हम पक्का बांध लेते हैं, प्यूरिटी की पर्सनालिटी बना लेते हैं, आत्मभिमानी स्थिति और योग युक्त होकर हम हर व्यक्ति से मिलते हैं और दिनचर्या में पक्के रहते हैं कि अब हमारी दिनचर्या योगी की दिनचर्या। तो आपकी अवस्था बहुत अच्छी बनी रही। लगभग एक रस हम चल सके, अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। तो ये है स्वयं की सुरक्षा और वो हमें करनी ही है, क्योंकि हमारी सेवा वो है ना कि पहले हम अपने लाइफ में अप्लाई करें और फिर औरों को भी सिखाएं। शुरू से ये फाउंडेशन पक्का रहा। घर में पिताजी ने हम सबके लिए स्ट्रिक्ट नियम बना दिया था कि हम घर में हो या ना हो, 7 बजे माना सबको योग में बैठना ही है। फिर मेहमान भी कोई आवे या कोई भी आवे, भाई 7 से 7:30 हम योग में बैठेंगे भगवान को याद। ऐसे नहीं उनके कारण हम अपना सारा दिनचर्या डिस्टर्ब कर दें, जहां तक हो सके हमें ये लक्ष्य पक्का रखें। तो हमारी आत्मा भिमानी स्थिति, योगयुक्त स्थिति अपने आप बनी रहेगी। लोगों को पता चलना चाहिए, जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं उनको पता चलना चाहिए कि सुबह 6 से 8 के बीच में या शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में ये फोन नहीं उठाएंगे। हमारे भाई बहन योग से उठकर जाते हैं फोन मोबाइल लेकर, नहीं। लोगों को पता हो कि इस समय ये योग में होते हैं, इनको अभी ये नहीं उठाएंगे। हम उनके फोन के कारण अपना योग मिस करके जाते हैं। हमने योग को लाइफ के लिए अपनाया है, तो कब तक हम ये पीरियड मिस करते रहे। हम खुद उसको महत्व देंगे तो आप उनको सिखाएंगे ना कि आप रोज योग करो। दूसरा, हम यज्ञ से बंधे हुए हैं। यज्ञ माना विद्यालय, संस्था। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, बल्कि हम तो इस यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण बच्चे। तो अब हम व्यक्ति नहीं हैं, अब हम संस्था है, विद्यालय है, यज्ञ है। आप ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधि हैं। अब लोग आपको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ये ओम शांति वाले। इसलिए हमारी कोई भूल होती है तो लोग क्या कहते हैं? मान लो कोई कारण से हमने गुस्सा कर दिया ऑफिस में या बिजनेस में या अड़ोस पड़ोस के साथ, तो वो कहते हैं ना कि भी आपको ओम शांति में ऐसा सिखाते हाँ? लोग भल धारण ना करें, पर लोगों को पता है ब्रह्मा कुमार कुमारी की धारणाएं क्या होती, और हमारी कोई भूले कम धारणाएं कम परिवर्तन हाँ? तो वो तुरंत कहते हैं कि आप वहां तो ऐसा सिखाया जाता, जैसे घर में बच्चे भी कहते हैं ना हाँ? घर में बच्चे भी कहेंगे हाँ? मैं दीदी को बता दूंगा आपने मेरे को डांटा था हाँ? बच्चे भी कहते हैं, लोग भले धारणाएं नहीं करते हैं, वो कितना भी गुस्सा करते होंगे, पर वो जानते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी शांत रहते हैं। तो अब हम व्यक्ति नहीं है, हम संस्था है, यज्ञ है, विद्यालय है। ये जवाबदारी कि सदा हमें सतर्कता रहनी चाहिए। बाबा ने यज्ञ, इस यज्ञ की कौन सी बातें फेमस है? पवित्रता, सब जानते हैं। यहां भाई बहन बनाया जाता है, सबको पता है कि यहां इतनी पवित्रता है कि पति पत्नी भी भाई बहन की तरह रहते हैं। लोगों को मालूम है इतनी ऊंची यहां पवित्रता है। दूसरी कौन सी बात हमारी फेमस है? हाँ, शुद्धान। कई बार हम सोचते हैं ना कि भई ये तो मशीन मेड है, मशीन मेड चीजें आजकल मिलने लगी ना, क्योंकि पूरे प्लांट के प्लांट कंप्यूटराइज्ड होते हैं, कोई टच नहीं करते हैं, तो कोई ऐसी चीज लेकर हम खाएंगे तो भी वो लोग पूछते हैं कि आप लोग तो बाहर का नहीं खाते हैं ना और वो लोग तो इतना ऊंचा मान लेते हैं। एक जगह हम गए थे, प्रोग्राम था, तो अपने प्रदर्शनी मेला ऐसा होता है तो सारा भोजन सब कुछ बनता है ना, तो चाय भी बनती थी, भाई बहने पीते थे, तो वो कहते अच्छा आप लोग चाय पीते हैं माना इतना वो समझते हैं कि ये लोग तो पता नहीं ये सब कुछ नहीं खाते। तो हम तो दिन रात बाबा का ज्ञान सुनते हैं, हर मुरली में कोई ना कोई धारणा की बातें बाबा रोज ही समझाते हैं। तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी है कि यज्ञ की जो इमेज है वो कितनी ऊंची है, इसलिए हमें भी इतनी ही ऊंची धारणाएं रखनी। छोटी मोटी अनावश्यक बातों में हमें अपनी धारणाएं लूज नहीं करनी, जैसे कई चीजें हैं आवश्यक नहीं है, जैसे कोई आइसक्रीम खाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, वो कोई जरूरी नहीं है। हम अपना पानी लेकर जाते ही हैं, पर बुद्धि में भाई वैसे नहीं खाएंगे, पर ट्रैवलिंग में जाएंगे तो खाएंगे, नहीं क्यों आवश्यक शरीर के लिए जो जरूरी है वही मुझे खाना है, तो हम और उसको पक्का कर सकते हैं। अरे कई बार हम अपना ही हाथ का बनाया हुआ और बहुत कुछ लेके जाते हैं और खाते हैं ट्रेन में, तो भी उन लोगों की नजर जाती कि ये लोग तो देखो कितनी आइटम लेके आए हैं। ट्रैवलिंग में अच्छा लगता है, फ्री होते हैं तो खाते पीते हैं, तो लोग देखते हैं कि अरे भाई ये तो इतना सब खाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, सादा सात्विक और सरल जीवन। यज्ञ की शांति फेमस, अक्सर लोग कहते हैं यहां आते ही, गेट के अंदर आते ही शांति का अनुभव होता, वाइब्रेशंस ही बदल जाते हैं, उनके थॉट्स चेंज हो जाते। कितने न लोग आके बताते, बाबा कहते हैं ना आपका सेंटर, आपका योग रूम जहां पूरे परिवार के परिवार ज्ञान में चलते हैं, योग रूम होते हैं, तो बाबा कहते हैं आपका घर, आपका योग रूम, आपके सेंटर्स शांति कुंड अनुभव होते हैं। वो शांति कुंड, तपस्या कुंड होने चाहिए। लोगों को मन पॉजिटिव बनता है, अपने आप शांति अनुभव होती। तो शांति फेमस है। और आज इतने सालों के बाद है ना, 69 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो सब धर्म संप्रदाय और दुनिया समाज यही कहती थी अब ये टूट जाएंगे, इनका हेड चला गया ना, अब ये टूट जाएंगी। क्योंकि अक्सर हर संप्रदाय में ऐसा होता कि उनके शिष्य आपस में लड़ते हैं, और संप्रदाय बने ही कुछ ना कुछ ऐसे कारणों से कि दो अलग हो गए। तो लोगों के वाइब्रेशंस ये थे कि अब देखते हैं इनकी संस्था कैसे चलती, इनका दादा चला गया, इनका बाबा चला गया, पर बाबा का कार्य कोई व्यक्ति पर आधारित नहीं है, बाबा के सत्य ज्ञान पर आधारित है। और हमारी दादियों ने इतना चला के देखा, अभी भी हमारे बड़े भाई दीदियां इतने योग्य है कि अंत तक ये अच्छी रीति चली है। तो अखंडता, प्रेम से सेवा करते है ना भाई, ये मुस्कुरा के सेवा करते। कितने न मेहमान कहते रहते हैं, इतना प्यार से तुम्हारी घरवाली भी हमें नहीं खिलाती, हमारे घर में भी हमें नहीं खिलाते, और बाबा के बच्चे सेवा करने वाले प्यार से, क्योंकि बाबा के बच्चे की नजर है ना हमारी, तो कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर आए हैं, प्यार से खिलाते हैं, सेवा खुशी से करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं। मनोहर दादी थे ना यहाँ, तो सेवाधारी माताओं से पूछते थे कि माताएं घर में तो आप 2-5-10 की सब्जी रोटी बनाते हैं, यहाँ तो आप हजार हजार, 2-2 हजार, शांति वन में तो कितने आप इतने लोगों की सब्जियां काटते हैं, रोटी बनाते हैं, तो आप थक नहीं जाते हैं? ऐसे माताओं से पूछती थी दादी। माताएं क्या जवाब देंगी? सेवा में आते होंगे ना आप लोग भी, तो खुशी से करते हैं ना। तो माताओं ने बोला, नहीं नहीं दादी, हम तो बहुत खुशी से करते, हम थकते नहीं। एक बूढ़ी माता ने बोला, दादी और ये घर में हम थक जाते। तो दादी ने पूछा कि क्यों घर में थक जाते हैं? कहते हैं कि मैं बूढ़ी माँ करती हूँ, बहू बैठी रहती है, तो और ये विचार चलते हैं तो मैं थक जाती। आज के जमाने में तो ऐसा ही है, जवान बेटे बहू बच्चे मदद नहीं करते हैं और बूढ़ी माँ करती है, तो कहती है और ही घर में थक जाते हैं। यहां हम खुशी से करते, सब मिलके करते। तो ये जो हमारी विशेषताएं हैं यज्ञ की, वो हमें सदा बना के रखनी। कोई अपवित्र दृष्टि वृत्ति संबंध कर्म प्रवृत्ति हमारे से नहीं होने चाहिए। यज्ञ की पवित्रता को हमें बना के रखना है, बल्कि और ऊंची क्वालिटी की पवित्रता रखनी, ये यज्ञ रक्षा है। तो हमारी ऐसी दैहिक भाव की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, हमें पवित्रता को और कंप्लीट करना, संपूर्ण निर्विकारी बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करके खुश नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं है कोई बाबा ने क्रोध करने की, लोभ भ्रष्टाचार करने की, मोह की अभिमान की कोई छुट्टी नहीं दे दी। वो तो बाबा बताते हैं काम महाशत्रु, पर ये भी शत्रु ही है। तो हमारी इस अलौकिक परिवार में, लौकिक परिवार में, कहीं भी हमारी पवित्रता श्रेष्ठ, कोई गंदे विचार, गंदी दैहिक दृष्टि वृत्ति नहीं, हमें यज्ञ की पवित्रता को ऊंचा बना के रखना, ये यज्ञ की रक्षक है। शांति हमारे कारण सेंटर में, पाठशाला में, सेवा में, मधुबन में, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमें स्वयं शांत रहना। बाबा ने मुरली में कितनी ऊंची बात कही, शांति फैलाना भी आसुरी कार्य है। हमारे कारण सेंटर में कोई टकराव, अशांति, ऊंचा बोलना चलना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। भल हम अपने आप को झुका देंगे, अपनी बात छोड़ देंगे, हम नम्र बन जाएंगे, भल हम सही है, हम अपनी बात रखेंगे, बाकी लड़ाई झगड़ा शांति नहीं, क्योंकि यज्ञ शांति के लिए स्थापन हुआ है। बाबा कहता अशांति फैलाना आसुरी कार्य है, पर अशांत होना भी आसुरी कार्य। बाबा तो इतनी ऊंची बात हमें बताते। ये हम सब ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है। हमारे कारण कोई लड़ाई झगड़ा शांति बोला चाली नहीं होना चाहिए। हमें योगी बनकर सब कुछ करना है। योगी की व्याख्या क्या है? योगी स्थिति किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं ना, योगी जन उसको कहे शीतल जिनके अंग। योगी की दृष्टि महासुखकारी। तो अपने घर से लेकर जहां कहीं भी हम हैं, और ये तो अलौकिक परिवार है, बाबा का ही घर है सेंटर, हम मददगार बनने आए हैं, विघ्न डालने थोड़ी आए। बाबा इसलिए तो कहते हैं ना, सेंटर्स निर्विघ्न हो, जोन निर्विघ्न हो, पूरा यज्ञ निर्विघ्न हो, हर ब्राह्मण निर्विघ्न। यज्ञ सदा अखंड रहे, हमारे कारण कोई ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं आपस में लड़ झगड़ के सेंटर में ग्रुपिज्म हो जाते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है सेवा करना। और आपस में लड़ झगड़ के अलग होके फिर अलग पाठशाला खोलो, इसमें क्या सेवा होगी जिसका फाउंडेशन ही रॉन्ग है। यज्ञ को अखंड रखना है, हमें मनमत से कोई काम नहीं करना, पूरे विश्व भर में हम एक है बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं ना, एक बाबा के हैं, एक हैं आपस में। कहीं भी कोई विजिट करे सेंटर, देश या विदेश में, बाबा ने कहा है सब सेंटर एक रस है, एक मत है, ऐसा अनुभव करें। हम श्रीमत पर चलने के लिए आए हैं ना, यहां किस लिए आए? क्योंकि बाबा की श्रीमत यहां मिलती, रोज की मुरली से श्रीमत मिलती है ना, बस हमें उस अनुसार ही चलना है ना। मुझे मेरी मत को महत्व देना है ना, किसी की मत में ग्रुप बनना है। बाबा, बाबा की श्रीमत, बाबा का यज्ञ। इसलिए हमारी ऐसी कोई चाल चलन ना हो जो यज्ञ डिस्टर्ब टूटे। और सेवा सदा प्यार से करनी, खुशी से करनी, अभिमान नहीं। यज्ञ को हमें संपन्न रखना है, भरपूर रखना है। बाबा कहते हैं ना, जिनके इतने बच्चे हो उस माँ बाप को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारा यज्ञ सर्व के सहयोग से चलता है और हम अपनी पढ़ाई, अपनी उन्नति और अपनी स्थिति बनाने के लिए ही तो यज्ञ को चला रहे। हम कोई बाबा के ऊपर, आज बाबा ने नहीं कहा, कई समझते हैं जैसे हमने बाबा पर उपकार कर दिए। हम सहयोगी हैं तो समझते हैं कि जैसे बाबा पर कृपा कर रहे हैं, नहीं, हम अपनी पढ़ाई के लिए ही अपना यज्ञ चला रहे, अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए ही यज्ञ चला रहे। आज इतने सेंटर्स खुले, इतना बेहद का मधुबन यज्ञ हमारी अपनी उन्नति के लिए ही तो है, तो वो भरपूर रहना चाहिए। दादी गुलजार की कही हुई एक बात मैं आपको बताती हूँ। हमारी बिजनेस विंग की मीटिंग थी और दादी उसकी चेयरपर्सन थी, तो दादी ने इतना अच्छा बताया कि ब्रह्मा बाबा सिर्फ सहयोगी नहीं बने, जिम्मेवार बने यज्ञ के लिए। सिर्फ सहयोग दिया और जिम्मेवार बनना अंतर है ना। भाई मान लो ब्रह्मा भोजन बनाना है, कौन कौन मदद करेंगे? तो हर कोई हाथ ऊपर करेगा, पर कौन जवाबदारी लेगा? तो दो चार ही हाथ होते हैं। ब्रह्मा बाबा सिर्फ सहयोगी नहीं बने शिव बाबा के यज्ञ में, जवाबदार बने। लक्ष्य रखना है, हम जिस जिस सेंटर में जाते हैं, मधुबन आते हैं, हम जवाबदार आत्मा है। बाबा का हिस्सा हमें निकालना ही है, ऐसे नहीं पैसे बचे तो मदद करनी, ऐसा नहीं। तो यज्ञ सदा भरपूर रहे, कोई कमी ना हो। हाँ, हमें कोई लग्जरियस नहीं बनना है, हमें वेस्ट नहीं करना, पर हमें बाबा का साथी, सहयोगी, स्नेही, शुभेच्छक, जिम्मेवार बनना है। तो यज्ञ रक्षा करने वाले, एक बार अव्यक्त बाप दादा से पूछा था, उस समय यहां अकाल था और उसके कारण चोरियां भी हो रही थी और कुछ ऐसा हो रहा था, तो सिक्योरिटी जो यहां डिपार्टमेंट है, तो कईयों ने पूछा कि, मैंने बाबा से पूछा कि बाबा क्या हम कोई वेपन रखे, बंदूक ऐसा कुछ? बाबा ने बोला बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तपस्या के वाइब्रेशन से यज्ञ सदा सुरक्षित रहे। हमें दृढ़ता होनी चाहिए कि जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तपस्या बाबा ने सिखाया है, उसके अलावा और कोई रास्ता हमें नहीं लेना। हर समस्या, हर विघ्न हमें श्रीमत के अनुसार ही पार करना है, दूसरा रास्ता हमारा है ही नहीं। श्रीमत और मर्यादा से, और जब हम ऐसा बनेंगे, स्वरक्षक और यज्ञ रक्षक, ऑटोमेटिक हम विश्व रक्षक है ही, हम विश्व, प्रकृति, मनुष्यात्माएं, पशु पंछियों के आगे भी रक्षक है। हमारे से किसी को भय ना हो। देखो आज रक्षाबंधन कल है ना, क्यों ये शुरू हुआ? क्योंकि बहनों को भय है भाइयों से, पुरुषों से, पुरुषों को बहनों से भय है, दृष्टि, वृत्ति, दैहिक, इसलिए समाज ने रक्षाबंधन भाई बहन का बना दिया। पर जब हम पवित्र योगी हैं, तो हमारे से किसी को भय ही नहीं है, न गंदी दृष्टि वृत्ति का भय है, न अन्याय हमारे से किसी को होगा, न पक्षपात होगा, न हम किसी का शोषण करेंगे, न दमन करेंगे। योगी माना भगवान जैसा बनना, सुखदाता, तो हमारे से किसी को भय नहीं, क्योंकि हमारे, हमारा सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार। आज तो यही सब भय है ना, लूटते हैं, बनावट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गुस्से में आके क्या क्या करते हैं, गंदी दृष्टि में आके दुनिया आज क्या कर रही। हम योगी प्रत्यक्ष परोक्ष सबके लिए कल्याणकारी, हमें ऐसा बनना। तो देखो, हम प्रकृति को भी, पशु पंछियों को भी हमारे से अभय दान है, निर्भयता है, तो ऐसा ही लक्ष्य है ना सभी का, स्वरक्षक, यज्ञ रक्षक और विश्व रक्षक। ओम शांति। कोई बात जो मैंने कही वो ना समझ आई हो या और भी कुछ एडिशन करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। 10 मिनट है, 5 मिनट योग करेंगे और 5-7 मिनट है कोई क्वेश्चन किसी को पूछना इस टॉपिक पर कुछ, या कोई भी फर्स्ट टाइम जो आए हैं भट्टी करने वो हाथ ऊपर करें। मधुबन में फर्स्ट टाइम, ज्ञान सरोवर में, बाकी तो नीचे भट्टियां तो होती है। कोरोना का शुक्रिया, भट्टी का मौका मिला नहीं तो ज्ञान सरोवर शांतिवन बने तब से कंटिन्यूअस फुल ईयर की सेवाएं चलती पांडव भवन में। ये स्पेशल, और ज्ञान सरोवर तो फॉरेनर्स और विंग्स के मेहमान, ब्राह्मण भाई बहनों को इस साल पिछले 1.5 साल से रहने का मौका मिला। हाँ हाँ, हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हमें सिर्फ मशीन मेड नहीं खाना है, हमें तो योग मेड खाना है, है ना। हमारी धारणा तो ये है, कोई लाचारी हालत है, कोई लंबी ट्रैवलिंग है और सेंटरों से भी मदद लेना आजकल सहज नहीं है क्योंकि बहुत भाई बहने हो गए हैं, तो आप मशीन मेड लें और फिर योग मेड करके खाएं थोड़ा योग कर ले। हाँ, ये अपने, इसलिए मैंने कहा आवश्यकता, जरूरत है तो आप लीजिए और योग मेड करके खाइए। बाकी कई बार आदत हो जाती है ना कि भाई चलो ट्रैवलिंग में है, ये भी खाएं वो भी खाएं फलाना भी खाएं, जरूरत है आवश्यक है तो आप लीजिए। फल लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, मशीन मेड लेते हैं, उसमें भी आजकल बनावट तो बहुत आ गई है, इसलिए सेफ्टी जो बाबा ने कहा है वो बहुत मूल बातें कही कि आप खुद बनाओ और खाओ, अपना लेके निकलो, पर लंबा ट्रैवलिंग है, कोई फैसिलिटी नहीं है तो आप लेके फिर योग मेड करके खाइए। फ्रूट भी लेते हैं, 10 मिनट भी योग करिए। एक पानी की बोतल का भी आपको पता होगा, अपना ही एक भाई था ब्रह्मा कुमार, तो पानी की मिनरल बॉटल्स तो लेते हैं ना, क्योंकि पानी तो स्वच्छ मिलता नहीं, तो भी वो भाई फ्रेश होने गया तो उसकी बोतल में इंजेक्शन लगाया, तो वो पिया तो बेचारा बेहोश हो गया और उसको लूट के लेके उतर गए लोग, अपना ही बीके भाई था। तो आजकल बहुत सेफ्टी से हमें ट्रैवल करना है, नहीं तो लोग जानते हैं कि अरे आप और कुछ नहीं खाते हैं, फ्रूट खाइए, ये फ्रूट आप खाइए, उसमें भी इंजेक्शन लगा देते। तो सचमुच बाबा तो त्रिकालदर्शी है जो 80 वर्ष पहले से धारणाएं कराई, हाँ, कि हमें नहीं चाहिए, अपने से गुजारा होता है तो ठीक है, बाकी कोई चीज ऐसी मजबूरी लेनी पड़ती है तो फिर आप उसको जरूर योग करिए। नहीं, यज्ञ बाबा ने रचवाया, शिव बाबा तो खुद कुछ करेंगे नहीं ना, क्योंकि वो अगर हमारा करे फिर तो हर किसी का करे, कोई भी धर्म वाला हो, वो तो उनके बच्चे हैं ना, सारी दुनिया उनकी बच्चे, इसलिए वो कराने का कार्य करते हैं, बस इस अर्थ में करण करावाना कि वो कराने का कार्य करते हैं, उनको तो नहीं करना है ना, क्योंकि वो आज अगर हमारी रक्षा करे तो सबकी करे, सबकी करे ना, इसलिए वो हमें एक तो ज्ञान देते हैं कि कैसे हम रक्षा कर सकते, वो सारा मार्गदर्शन वो देते हैं और हम हिम्मत करते हैं तो मदद भी करते हैं, पर करना हमें है, जवाबदारी हमारी, हम करेंगे तो हम पाएंगे, बाबा करेगा तो बाबा पाएगा। कर्म सिद्धांत है ना, ये तो कर्म क्षेत्र है, इसलिए बाबा करेगा तो बाबा पाएगा, हम करेंगे तो हम पाएंगे, इसलिए हम निमित्त बच्चों को ये सब ध्यान देना है। देखो योग मन और बुद्धि से लगाना है ना, बाबा से योग लगाना है ना, मन और बुद्धि से वो कनेक्ट रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंख खुली है या बंद है। पर अगर मन और बुद्धि बाबा से लगे हुए नहीं है तो आपको फर्क महसूस होगा कि बंद करे तो अच्छा रहे, क्योंकि कम चीजें दिखाई देगी। पर देखते हुए भी आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देखने वाली आंख नहीं है, मन और बुद्धि है। आंख नहीं देखती, आंख तो एक साधन है, देखने वाली कौन है? मैं आत्मा। मैं आत्मा अगर बाबा को देख रही हूँ, बाबा के प्यार में मस्त हूँ, तो मेरी आंख खुली है, हजार बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़े। इसलिए इंटरनल लगन पर ध्यान देना है। खो जाते हैं फिर कोई फर्क नहीं पड़ता।